नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तक फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का लेखक पौलुस प्रेरित है और वह इस पत्री को जेल से लिखा है फिलिपी के कलीसिया के लोगों के लिए, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था और कलीसिया भी उससे प्रेम करती थी। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो आपके वचन को सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, किसी न किसी आर्थिक दबाव में या पारिवारिक दबाव में उलझे हुए हैं। आप उनकी सहायता करें ताकि प्रत्येक का जीवन आप में आशीषमय होने पाए। इस समय हम सबके साथ हो, आप हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद को निकालें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ध्यान दीजिए, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अर्थात खाली कर दिया। अब प्रश्न यह है कि किस बात से खाली करके शून्य कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उसने स्वयं को ईश्वरत्व से खाली कर दिया। आरंभिक कलीसिया में आध्यात्मिक ज्ञान का दावा करने वाले कहते थे कि उसने अपने ईश्वरत्व को खाली करके शून्य कर दिया। यह कलीसिया की सर्वप्रथम झूठी शिक्षा थी। उनका कहना है कि ईश्वरत्व उसमें बपतिस्मे पर प्रवेश करके क्रूस के समय उसे त्याग करके चला गया। यह विचार बाइबल में कहीं भी नहीं है। उसने स्वयं को खाली तो किया, परंतु ईश्वरत्व से नहीं। मेरे प्रियो, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, मरियम की छाती से लिपटा हुआ शिशु 100% परमेश्वर था। वह तो उस समय भी इस जगत का अस्तित्व समाप्त कर सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर था। ऐसा एक पल भी नहीं था कि वह परमेश्वर ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 1-3-4 पद में हम देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो फिर प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर आने में अपने आप को किस बात से खाली किया? प्रश्न यहाँ पर यही आता है। मेरे विचार में ईश्वरत्व के विशेषाधिकार से, जी हाँ, वह इस पृथ्वी पर कुछ सीमाओं के अधीन था, परंतु वे उसके अपने ही द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं था जब वह परमेश्वर नहीं था। चरवाहे, ज्योतिष और स्वर्गदूतों की सेना ही उसके दर्शक थे। जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, जबकि संपूर्ण जगत को वहां उपस्थित होना था, परमेश्वर के सब सृजित बुद्धिजीव, रोम का राजतंत्र आदि सबको वहां पर होना था। पूर्व के ज्योतिष ही नहीं उत्तर पश्चिम और दक्षिण सब जगह से मनुष्यों को वहां पर आना था। यरूशलेम का मंदिर उस दिन खाली हो जाना था। उन सबको बेतलेहम में होना था परंतु वहां कोई नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें वहां जाने के लिए विवश क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर होने के विशेषाधिकार को अलग कर दिया था। वह एक एक गंदे स्थान में जन्म लेने के लिए तैयार था। यह स्थान वैसा नहीं था जैसा हम बड़े दिन अर्थात क्रिसमस के कार्ड में चरनी पर का चित्र देखते हैं। वह एक अभागे नगर नासरत में बड़ा होने के लिए तैयार हो गया था। उसने इस बात को स्वीकार किया। वह एक अज्ञात व्यक्ति बनने के लिए तैयार था। वह अपने शकीना महिमा सदैव साथ रख सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके सिर पर वह आभा नहीं थी जिसे हम चित्रों में देखते हैं। यह चित्रकारों की देन है। यहूदा ने उसे पकड़वाने के लिए चूमा था कि उसे पकड़ने वाले उसे पहचान ले। वह अन्य मनुष्यों में अलग से पहचाना नहीं जाता था। वह पूरा मनुष्य था परंतु देहधारी परमेश्वर था। उसने ईश्वरत्व के अधिकार त्याग दिए थे। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? जी हाँ, हम इस पर विश्वास करते हैं और कर सकते हैं। अपनी सेवा के अंत में उसने अपने सांसारिक जीवन की अंतिम रात अपने शिष्यों को साथ लेकर स्वर्गीय पिता से बड़ी अद्भुत प्रार्थना की, जिसमें उसने यह एक मुख्य बात कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहां विशेष ध्यान दें, उसने अपनी महिमा के पुनः स्थापन की प्रार्थना की, क्योंकि उसने ईश्वरत्व का त्याग कभी नहीं किया था। परंतु अब क्योंकि वह स्वर्ग लौटने वाला है, वह ईश्वरत्व के विशेषाधिकार को फिर से मांग रहा है, क्योंकि उसने उसे त्याग दिया था। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मेरे प्रियो, मसीह की दीनता में तीसरा अवतरण का चरण है, दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर एक दास के रूप में आया था। उसने एक बढ़ई का व्यवसाय संभाला। यदि आप उस समय नासरत में होते तो दुकान में जाकर यीशु से कहते कि आपका दरवाजा टूट रहा है, क्या वह उसे घर आकर उसे सुधारेगा? मेरे विचार में उसका उत्तर होता, मैं अभी आता हूं। देखिए, वह एक दास के समान था। वह रोम के राजा के घर में भी जन्म ले सकता था क्योंकि वह राजा था, परंतु उसने यरूशलेम प्रवेश तक इस बात को छिपाए रखा। वह एक अकिंचन मनुष्य बना रहा, एक दीन मनुष्य, एक साधारण मनुष्य। जी हाँ, बिल्कुल हमारे जैसा। यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 पद में भविष्यवाणी की गई थी, प्रभु यीशु ईशय का मूल होगा। मैं सदा सोचता था कि उसे दाऊद का मूल क्यों नहीं कहा गया है। अब मैं यह बात समझता हूं। दाऊद राजा था जिसके वंशज यूसुफ और मरियम दोनों थे, परंतु अलग अलग वंश से। ईशय एक किसान था। हमारा प्रभु यीशु किसानों में जन्मा था, दास का स्वरूप धारण किया। जी हाँ, चौथा चरण था, मनुष्य की समानता में हो गया। वर्षों तक तो मुझ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मुझे मनुष्य होना अच्छा लगता है। मैं समझ नहीं पाता था कि मनुष्य होना दीनता है। मेरे विचार में तो मनुष्य होना सम्मान है, अति उत्तम है। यह दीनता कैसे हो सकता है? मैं आपको एक घरेलू उदाहरण देता हूं जो आपको सहायता प्रदान करेगा, परंतु यह कुछ हास्यपद है। यह मसीह की दीनता को प्रकट करता है। एक बार मैंने देखा कि मेरी रसोई में चींटियां थी और वह चीनी में पहुंच गई। मैंने तुरंत जहर लाकर उनका सफाया किया। अब जब हम वहां से चलकर हमारे गांव को गए तो वहां भी चींटियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरा एक मसीही मित्र कीट नियंत्रण विभाग में था। उसने आकर चींटियों का नाश करके मुझे मुक्ति दिलाई। मैं हत्या के पक्ष में नहीं हूं, परंतु मैं चींटियों को चीनी के पात्र में नहीं देख सकता। यदि संभव होता तो मैं उनसे कहता कि वे मेरे घर में ना आए, बाहर ही रहें। मैं उन्हें वहीं भोजन पहुंचा दूंगा, परंतु यह संभव नहीं है। मुझे चींटियों से बात करने के लिए चींटी बनना होगा, परंतु मुझ में चींटी बनने की क्षमता नहीं है। यदि होती भी तो मैं चींटी नहीं बनता, नहीं तो कोई न कोई मुझ पर पांव रखकर मुझे कुचल देता। मेरे लिए चींटी बनना दीनता का चरण है। मुझे चींटी बनना अच्छा नहीं लगता, परंतु प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर जो किया वह तो इससे कहीं अधिक महान कार्य था। उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग करके पृथ्वी पर मानव रूप लिया। वह मनुष्य की समानता में हो गया, आपके जैसे और मेरे जैसे। अब प्रभु यीशु की दीनता का पांचवा चरण आता है। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मेरे मित्रों, आपको और मुझको दीनता का बोध तब होता है जब कोई हमसे ऐसी कोई बात कहे, परंतु प्रभु यीशु ने स्वयं ही अपने को दीन बनाया, जो एक अत्यधिक कठिन काम है। मुझे जॉन वेस्ली की एक सर्वोत्तम घटना स्मरण है। एक दिन वह नाला पार कर रहे थे। पुलिया केवल इतनी ही चौड़ी थी कि एक मनुष्य उस पर चल पाए। उसी समय सामने से एक मुक्त विचारवादी प्रचारक आ रहा था। उसने बड़े घमंड से उनसे कहा, मैं मूर्खों को मार्ग नहीं देता हूँ। जॉन वेस्ली मुस्कुराते हुए पीछे चले गए और कहा, मैं तो मूर्ख को भी रास्ता दे देता हूँ। मेरे मित्रों, दीन बनना आसान नहीं है, परंतु इस घटना को सुनकर मुझ में जॉन वेस्ली के प्रति अधिक सम्मान के विचार उत्पन्न हुए। हमारे लिए दीन होना कठिन है, परंतु प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन किया। हम में से अधिकांश को दीन होने का अनुभव प्राप्त है। वर्षों पूर्व मैं एक सभा में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। उस सभा में प्रचारकों के मध्य एक माननीय अंग्रेज प्रचारक भी था। वह मुझे टी शर्ट में प्रचार करते देख आश्चर्य से भर गया। उसके विचार में यह अक्षम्य अपराध था। वह सूट पहना था और टाई बांध रखी थी। इसी बीच वहां हवा और वर्षा के कारण खिड़की का कांच टूट गया और मंच पर पानी आने लगा। उस युग में आप प्रचार करें या ना करें, आपको प्रतिदिन मंच पर ही बैठना होता था। उस दिन मैं उस माननीय वक्ता के पीछे चल रहा था कि अचानक पानी में उसके पांव फिसल गए और वह गिर पड़ा। सबकी हंसी छूट गई। मुझे भी इतनी हंसी आई कि बाहर जाना पड़ा। जब मैं मंच पर लौटा तब भी मुझसे हंसी नहीं रुक रही थी। हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ और वह फिर मेरे सामने ही बैठा था। मैंने उसके कान में कहा, यदि उस प्रदर्शन को दोहराया जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा, ओह, क्या वह दीन बनाने वाली बात नहीं थी? निश्चय ही वह दीन बनाया गया था, परंतु उसने स्वेच्छा से ऐसा काम नहीं किया था। हमारे साथ ऐसा होता तो है, परंतु हम स्वेच्छा से ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं को दीन बनाया, जो सर्वथा एक भिन्न बात थी। मेरे प्रियो, अब आता है प्रभु की दीनता का 6ठा चरण। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मृत्यु एक अत्यधिक दीन अनुभव है। मैं कभी कभी दफन के समय लोगों को मृतक के बारे में कहते हुए सुनता हूँ, कैसा स्वाभाविक दिख रहा है। किसी शुभ चिंतक द्वारा परिजनों को शांति दिलाने की बात है। मैं अपने आप को यह कहने से रोकता हूँ कि वह स्वाभाविक नहीं दिख रहा है। मैं नहीं जानता कि दादा अगर मरने के बाद स्वाभाविक दिखें तो यह एक शांतिदायक बात है, क्योंकि मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं रचा है, मनुष्य पाप के कारण मरता है। मृत्यु इस जगत में एक मनुष्य आदम के पाप के कारण आई है और सब मनुष्यों में व्याप्त हो गई है। मृत्यु परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था तब वह हमसे कुछ भिन्न था। हम तो जीने के लिए आए हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो जीना चाहता हूँ, और जब तक परमेश्वर मुझे रखे मैं इसी फलवंत सेवा को करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मरने के लिए जन्मा था, उसे मरने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वह मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा और स्वेच्छा से अपने आप को दे दिया। मुझे तो मरना है परंतु मैं मरना नहीं चाहता। उसे मरना नहीं था परंतु वह मरना चाहता था। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार करे यदि हम उस पर अपना भरोसा रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 15, 17 और 18 पद में उसने कहा, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की दीनता का 7वां और अंतिम चरण अब हम देखते हैं, क्रूस की मृत्यु। वह मृत्यु तक ही आज्ञाकारी नहीं रहा, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यदि हम कहें कि यीशु को बिजली की कुर्सी पर मारा गया या गैस कक्ष में मारा गया या फांसी के फंदे में लटकाया गया तो हम पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। उसकी मृत्यु अत्यधिक अपमानजनक थी। वह महिमा के सर्वोच्च स्थान से अपमान के गहनतम स्थान तक उतरा। उसने ऐसा क्यों किया? हम फिर से उसी शब्द पर आते हैं, दूसरों। जी हाँ, अपने ही नहीं दूसरों की भी चिंता करो। उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और पृथ्वी पर आया। वह मनुष्य बना और एक दूसरों के लिए अपराधी की मृत्यु सहन की, आपके और मेरे लिए। आपने और मैंने जो पाप किए थे उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन हमें यह भी बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आपको और मुझे पाप की मजदूरी मृत्यु मिलनी चाहिए, परंतु उस मृत्यु को लेने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए, ताकि जो पाप मैंने किए हैं, आपने किए हैं, सारा मानव जाति ने किया है, उसे अपने ऊपर में ले ले। वह निर्दोष और निष्कलंक होकर भी हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। वचन में हमने पढ़ा है कि दूसरों की चिंता करो। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम उस भयानक दर्द से, उस मृत्यु से बच जाएं। और यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम स्वर्ग में उसके पास जा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आज आपके पास में दीन होने के कोई कारण हैं? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जिसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया? आपके लिए कष्ट उठाए, आपके पापों की सजा जिसे आपको मिलनी चाहिए थी उसकी सजा उसने उठा ली। आज आपके पास अवसर है, यदि आप चाहते हैं कि आप उन पापों की सजा से बच जाएं, तो आइए आज हम प्रभु यीशु के पास आएं और कहें, प्रभु मैं आपके सम्मुख अपने पापों को मान लेती हूँ, मान लेता हूँ, आप मेरी सहायता करें। आज मैंने इस वचन के द्वारा जान लिया है कि आप मेरे बदले में मरे हैं, इसीलिए मैं जीवित हूँ। इस संसार के लिए नहीं, परंतु उस अनंत जीवन की मैं लालसा करती हूँ, मैं करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों से प्रेम किया और हमारे बदले आप कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए। आपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, कोड़ों की मार सही, कांटों का ताज पहना और अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवाए, सिर्फ हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सब पापों को क्षमा कर दे। विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय वचन सुन रहे हैं, अपने जीवन में उन पापों के लिए दुखित हैं। आप उनके हृदय से बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को आप क्षमा कीजिए, ताकि आज इस बात को हम समझ सकें कि हमें आपकी निकटता में आना है, क्योंकि उद्धार आप ही के द्वारा उपलब्ध है। पिताजी, हर एक श्रोता भाई बहनों को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। प्रत्येक को आशीषित कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह मसीह का मन है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब परमेश्वर के निकटता में बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रेम का सागर तू है गहरा, जिसको खोजे ये मन मेरा।
इतना पावन नाम है तेरा, पल पल तुझको सब तुझ मेरा।
Oh,
जय जय जय